ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव की दो दिन की यात्रा पर जाएंगे। वे गुजरात के सूरत और नवसारी तथा दमन के सिलवासा में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आज दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में 2,587 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास करेंगे। वे सिलवासा में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सूरत में प्रधानमंत्री सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे। इससे लगभग 2,00,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिलेगा। श्री मोदी नवसारी में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेंगे। वे 25,000 से अधिक स्व सहायता समूहों को, 2,50,000 महिलाओं को 450 करोड़ रूपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की उपलब्धियों और सफलताओं ने दुनिया भर में आशा की नई लहर जगाई है। नई दिल्ली में एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि भारत आज वैश्विक विकास को गति दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता तथा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष 5 देशों में शामिल है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत अगले 3 से 4 वर्षों में स्वदेशी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU विकसित कर लेगा। श्री वैष्णव ने कल नई दिल्ली में AI कोष, AI कंप्यूटर पोर्टल और अन्य AI आधारित कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने 1 वर्ष पहले इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी थी और अब तक देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले 10,000 GPU का लक्ष्य निर्धारित किया था और अब यह आंकड़ा 14,000 तक पहुंच चुका है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कल नई दिल्ली में जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 200 जनजाति युवाओं से बातचीत की। ये युवा छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई जिलों से संबंधित हैं। बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बहुत से विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन जिलों में सड़कों तथा रेलवे का जाल बिछाया गया है और नए स्कूल खोले गए हैं। श्री राय ने कहा कि जनजाति समुदायों ने देश की आजादी की लड़ाई और इसकी संस्कृति को बचाए रखने में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने युवाओं से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने की अपील की। आज जन औषधि दिवस है। इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाने और जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य सभी को सस्ते मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इस पहल का सहयोग करने के लिए पूरे देश में सप्ताह भर की गतिविधियां आयोजित की हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के अधिकारियों ने दुबई से सोने की तस्करी करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने खुफिया जानकारी के आधार पर दुबई से मुंबई आए 2 यात्रियों की तलाशी में विदेशी मार्क वाले 1-1 किलो सोने की 21 सील और एक अधकटा टुकड़ा बरामद किया। जब्त किए गए 21 किलो 288 ग्राम सोने की कीमत 18,92,00,000 रूपये है। बारबाडोस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को COVID-19 महामारी के दौरान उनके कुशल नेतृत्व तथा सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ब्रिजटाउन में आयोजित एक समारोह में ये पुरस्कार स्वीकार किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कल अस्थाना में कजाकिस्तान के सूचना और संस्कृति उपमंत्री कनात इस्कोवोफ से मुलाकात की। उन्होंने श्री इस्कोवोफ को विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 में भाग लेने का निमंत्रण दिया। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ में सुपर जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।